अच्छा, उसके बाद जो है ना वो हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ लेप्रेसी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें ना इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी इंडिविजुअल पेशेंट का जो भी इम्यून रिस्पॉन्स होगा ना टू द माइकोबैक्टीरियम लेप्री या द एंटीजन्स ऑफ द माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इट विल डिफाइन द क्लिनिकल एंड द हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर ऑफ द इफेक्टेड पेशेंट। तो अगर पेशेंट के अंदर जो है ना वो इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी तो वेल फॉर्म्ड ग्रैनुलोमास बनेंगे, और अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर ग्रैनुलोमास नहीं बन सकते। ठीक है, तो इम्यूनिटी जो है ना वो इट इज़ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बेसिकली, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री को कंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये इम्यूनिटी वो उन सारी कंडीशंस जो कि इम्यूनो सप्रेस्ड होते हैं, जिसके अंदर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी डिप्रेस हो जाती है, उसमें इफेक्ट होगी, और हेंस जो है ना वो प्रॉपर हमें उस तरह की हिस्टोपैथ नहीं मिलेगी, यानी लेप्रोमेटिस पोल हमें नज़र आएगा। तो जो CD4 T सेल्स होते हैं ना, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स इन कंटेनिंग और द कंटेनमेंट ऑफ द इन्फेक्शन। दीज CD4 सेल्स रिलीज सर्टेन साइटोकाइंस विच कॉजेज द माइग्रेशन ऑफ द मैक्रोफेजेस इन द इफेक्टेड पार्ट ऑफ द टिश्यू, एंड फ्रॉम देयर द मैक्रोफेजेस इनगल्फ एंड किल द माइकोबैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और फिर उसके बाद जो है ना दे आर कन्वर्टेड इन टू आर एपिथिलॉइड सेल्स। ठीक है, तो लेप्रोमेटस पोल ऑफ द डिजीज़ में नंबर ऑफ़ द CD4 सेल्स कम होता है, और ट्यूबोकोलाइट पोल की तरफ हमें नंबर ऑफ़ द CD4 सेल्स जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। फिर उसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि हेल्पर टी सेल रिस्पॉन्स ना दो तरह के होते हैं, TH1 रिस्पॉन्स, TH2 रिस्पॉन्स। जो TH1 है वो टाइप 1 हेल्पर टी सेल से होता है, और TH2 जो है ना वो टाइप 2 हेल्पर टी सेल से होता है। इन दोनों के जो रिजल्टेंट इफेक्ट्स होंगे वो भी डिफरेंट होंगे, और इनके जो साइटोकाइंस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। जो TH1 टाइप रिस्पॉन्स है ना वो ट्यूबोक्यूलाइट टाइप ऑफ केसेस में देखा जाता है, और जो TH2 है वो लेप्रोमेटिस में देखा जाता है। इनके साइटोकाइंस कौन से हैं, TH1 का है इंटरलेकिन 1, 2, 6, 10, 18, TNF-alpha इंटरफेरॉन गैमा। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस अप रेगुलेटर, दे आर द अप रेगुलेटर्स ऑफ द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, तो इस वजह से ये ट्यूबोकुलॉइड टाइप ऑफ लेप्रेसी के अंदर देखा जाता है। जो लेप्रोमेटिस लेप्रेसी होती है उसके अंदर TH2 रिस्पॉन्स होते हैं, इसके जो जो साइटोकाइंस हैं दैट इज इंटरलुकिन 4, इंटरलुकिन 5, 8 एंड 10, दीज कॉजेज द अप रेगुलेशन ऑफ द ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, जो TH1 वाले साइटोकाइंस हैं वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को अपरेगुलेट करते हैं, और जो लेप्रोमेटिस वाले हैं वो ह्यूमरल इम्यूनिटी को अपरेगुलेट करते हैं। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती इन कॉजिंग एनी प्रोड्यूसिंग एनी इफेक्ट और किलिंग ऑफ द इंट्रासेलुलर पैथोजन इनसाइड द मैक्रोफेजेस। That is why the M. bellepri inside the macrophages go on multiplying, और वो increase उनका number होता रहता है। फिर उसके बाद macrophages जब they die, releasing hundreds of the M. lepri into the circulation, which are then engulfed by the new fresh macrophages. फिर उसके बाद histopathology में जो सबसे इसका specific feature है वो है granuloma formation। इनडिटर्मिनेट लेप्रेसी में जो प्री ग्रैनुलोमेटिस स्टेज होते हैं उसके अंदर कोई ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन नहीं होता। बाकी जो ट्यूबोकुलाइट है उसमें वेल फॉर्म्ड ग्रैनुलोमास होते हैं, और लेप्रोमेटिस में उतने वेल फॉर्म्ड ग्रैनुलोमास नहीं होते, लेकिन इसका जो बेसिक फीचर है ना हिस्टोपैथ में वो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद कौन से स्टेन्स हम यूज़ करते हैं, एक तो हम H&E स्टेनिंग करते हैं, और इसके अलावा एक और स्टेन है जो कि एसिड फास्ट बेसिलाई को देखने के लिए यूज़ करते हैं, वो है फाइट फराको स्टेन। ठीक है, वो बेसिलाई जो हमें इन दोनों स्टेन्स पे नहीं नज़र आते बिकॉज ऑफ डिक्रीज्ड नंबर, उनके लिए हम स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करते हैं इंक्लूडिंग द इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री इन साइटो हाइब्रिडाइजेशन और PCR, विच डिमॉन्स्ट्रेट माइकोबैक्टीरियल एंटीजन्स इन द सेक्शंस ऑफ लेप्रेसी लीजन विच डू नॉट शो एसिड फाइज बेसिलाई वाई द नॉर्मल स्टेनिंग मैकेनिज्म, और इस वजह से ये जो ये मेथड्स हैं इसकी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को इनक्रीज़ करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो ये बताया गया कि जो भी हम लेप्रेसी लीजन का हम सैम्पल लेते हैं और उसको देखते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, उसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस आर विजिबल ओनली इन लेस देन 1/10 ऑफ द टिश्यू सैम्पल। ठीक है, तो बहुत ही कम जगह पे ये नज़र आते हैं, तो इस वजह से हमारे सैंपल काफ़ी बड़ा होना तो चाहिए ताकि उसमें कम से कम हमें उतनी फाइंडिंग्स नज़र आएँ ताकि वो हमें डायग्नोसिस में हेल्प कर सके। कितना हमारा सैंपल साइज़ होना चाहिए? इट शुड बी 1.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड 0.5 सेंटीमीटर्स वाइड इंक्लूडिंग द सबक्यूटेनियस टिश्यू, इज़ आइडियल फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस इन द अर्ली लेप्रेसी। ठीक है, इसका एमसीक्यू भी इस तरह आ सकता है कि आपका जो सैंपल साइज है या बायोप्सी का वो कितना होना चाहिए, तो यू शुड रिमेंबर दिस वन।